लीना, यानी अपने रब का नाम लीजिए। तो रब का नाम क्या है? अल्लाह। वस्करुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तफ्लहून। ज़ाहरी मतलब तो ये है कि तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो फलाह के अंदर जिक्र का बहुत बड़ा दखल है। जिक्र का नागा रूह का फाका है। मामूलात का नाफा नहीं करना चाहिए। कुछ करने से होगा काम, बैठने से नहीं होगा। इंसान जिंदगी गुजार रहा है तो हर काम सुन्नत के सांचे में ढाले और एक लम्हे भी अल्लाह से गाफिल न रहे। हर काम सुन्नत के सांचे में करे। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं।
Allah, 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 Allah.
आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतवार की सुबह की मजलिस में तो बहुत फायदा हुआ, बहुत सी बातें लिख ली, सुनाऊंगा इंशाल्लाह। उससे पहले जो सफर हुआ उसको भी कारगुजारी सुनानी है, और सफर के बाद जो है सफर में इंसान के अंदर तकब्बुर आ सकता है, क्योंकि काफी अजीब सफर हुआ था। उसके बाद जबरदस्त इस्लाह हो गई माशाल्लाह। मौलाना अलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह वालों सफर से आता हूँ तो अपने शेख की खानका में जाता हूँ, तो खानका गया तो माशाल्लाह। वह भी इंशाल्लाह बताई जाएगी बात, बहुत अजीम शान फायदा हुआ, दिल खुल गया। असल तो है कि अल्लाह ताला खुश हो जाए, और जिनकी वजह से ये काम हो रहा है, हमारे मौजूदा शेख हैं आरिफ बिल्ला शेखुल उलमा हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब रंगत मालिया, उनसे इजाजत लेके ही जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी अपनी तरफ से नहीं जाता। फरमाता हूँ, अर्ज करता हूँ कि हजरत, मैसेज करता हूँ, आप हुक्म दे दें, ये सफर है सक्खर का, नौशहर व फिरोज का, आपका क्या हुक्म है? फरमाया जरूर जाए इंशाअल्लाह ताला, खूब दिल जान से दुआ है। मगर फिर फरमाया, आने के बाद फरमाया कि दिल में कुछ और आ रहा है, हर दफा आपको इजाजत दे देता हूँ, वो भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो एक सुन्नत का तकरार कर लेते हैं ताकि कुछ दिन की बात भी हो जाए, कि जब घर में दाखिल हो तो मुस्कुराते हुए दाखिल हो, ये सुन्नत है। तो उसमें ये बात थी हकीम मोहम्मद थानवी की बात में, ये बात बड़ी फायदा हुआ कि फरमाया हमारे यहाँ वज तो करामा तो कश्फ तो करामात का इतना जिक्र नहीं है, फीका फीका दीन पेश किया जाता है, सीधा सीधा कुरान और सुन्नत, भले कोई इसको फीका कहे या कैसा भी कहे, वजद आए नहीं आए, कैफियत आए नहीं आए, हम तो दीन पेश करेंगे। ये सुन्नत है, जब घर में जाए मुस्कुराते हुए जाइए। इस सुन्नत को मैं भी जिंदा करूँ, हम सब जिंदा करें, देखिए सारी टेंशन डिप्रेशन है दूर हो जाएंगी, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, और मुस्कुराते हुए जाएं। और उससे बड़ी सुन्नत ये, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एकदम आती बरस ना पड़े, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अल्लाह ताला मुझे भी सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक दे। पहले सबसे बड़ी सुन्नत तो सलाम की है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अलिफ को जाहिर करना है, हमजा को, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुस्कुराते हुए दाखिल, एकदम आके पकड़ धकड़ शुरू ना कर दो। ये सुन्नत तरीका है, अल्लाह ताला मुझे भी हम सबको इस सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले जो है कुछ दो तीन चार अशआर सुनाता हूँ, फिर हजरत वाला की बातें, फिर आखिर में जो है वो सफर की कारगुजारी और जो शेख ने इस्लाह फरमाई और आज की जो मजलिस हुई हजरत वाला शाह फिरोज अहमद साहब की, उसकी कुछ बातें हैं। इस तरह ये मजलिस तीन चार बातों में तकसीम होगी। उर्फतुस सालिकीन जो है वो जाना चाहिए, आपको भी अलग से जाना चाहिए, ऐसे नहीं जो बस मजलिस में आके चले गए, अलग से मिलना चाहिए शेख से। इसका नाम है सुकून दिल। अगर अल्लाह वालों से नहीं दिल की दवा पाता, बहुत मुश्किल था अपने नफ्स से सरकश को दबा पाता। अगर अल्लाह वालों से नहीं दिल की दवा पाता, बहुत मुश्किल था अपने नफ्स से सरकश को दबा पाता। खुदा की सरकशी से खुद खुशी है मालो दौलत में, कभी अल्लाह वालों से नहीं ऐसा सुना जाता। वही नकल करेंगे वो तो, भाई खोलो देखेगा वो क्या कर रहे हैं आप लोग बच्चे। खुदा की सरकशी से खुद खुशी है माल दौलत में, कभी अल्लाह वालों से नहीं ऐसा सुना जाता। सुकून दिल उतरता है फलक से अहले तक्वा पर, बिदू हुक्मे खुदा सा इंसदा फिर कैसे पा जाता। साइंसदान कितनी तहकीक कर ले, सुकून नहीं मिलने वाला। अल्लाह वाला साइंसदान है तो अलग बात है। अगर पेट्रोल की मानिंद होता ये सुकून दिल, जमीन में करके बोरिंग इसको हर काफिर भी पा जाता। बुतों के इश्क से दुनिया में हर आशिक पागल, गुनाहों से सुकून पाता तो क्यों पागल कहा जाता। गुनाहों से सुकून पाता तो क्यों पागल कहा जाता। बहुत बढ़िया है ये इश्क मराजी के चक्कर जो है। अल्लाह ताला हमें हमारी औलादों को, घर वालों, खानदान वालों को, सारी उम्र को इस फितने से बचाए और अल्लाह वालों की सोहबतें नसीब फरमाए। हर आशिक पागल हो जाता है। कौन आया मुझे बकायदा आशिक का जो है पागल हो गया, मिलना जुलना शुरू हो गया उसके साथ, मगर ये रहेगा ये भाई आखिरी स्टेज तक पहुंचा देगा। हिम्मत करके नूरी तैयार करो, उसकी फनाइयत को सोचो। और भी बातें समझाई, जवान है बेचारा। बुतों के इश्क से दुनिया में हर आशिक हुआ पागल, गुनाहों से सुकून पाता तो क्यों पागल कहा जाता। बचो गंदे अमल से, अमरदों से दूर हो जाओ। अगर ये फेल अच्छा था खुदा पत्थर न बरसाता। हम लोग कहते हैं हसीन लड़कों को, जैसे कुदरती दाढ़ी मूंछियां हैं, अगर आ गई उनकी तरफ मैलान होता है, ऐसे लड़कों से दूर रहो। अगर ये फेल अच्छा था तो खुदा पत्थर न बरसाता है। अजीब बात, इसको खत्म करना अजीब बात। कल परसों की मजलिस में हजरत फरमाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना था ये, और ये 1400 साल यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पुरानी बात है। उस वक्त से ये अमल चल रहा है, गंदे अमल लड़कों से गुनाह का। तख्त उस तरह से उठाया गया, साथ के आसमान पे ले गए, पलट दिया, फटक दिया, एक पत्थर बरसाए। इतना गंदा अमल है, ऐसा अल्लाह ताला को उस पर गुस्सा आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर के कोने से उठाया उस बस्ती को, 6 लाख की बस्ती थी। तो आज भी ये गुनाह आम हो गया। अगर ये फेल अच्छा था खुदा पत्थर ना बरसाता। आगे फरमा रहे, नहीं मुमकिन था उनकी राह में मेरा कदम रखना, अगर जज्बे करम की दिल नहीं कोई सदा पाता। वाह, एक अजीब बात फरमाई। अभी आज ही की मजलिस में था हाजी इमदादुल्लाह साहब, महाजी मक्की रहमत ने फरमाया कि हमारे सिलसिले में, क्योंकि अल्लाह के जज्ब के बगैर कोई जो है अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता, हमारे सिलसिले में जल्दी जज्ब इसलिए हो जाते हैं। तो अजीब बात फरमाई कि उसमें सुन्नत पे जब अमल करते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यारे हैं। जब सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह को प्यार आता है, अल्लाह को जब प्यार आता है तो जज्ब हो जाता है। इसलिए बहुत जल्दी हमारे सिलसिले में लोग अल्लाह वाले बन जाते हैं कि लोग जो है सुन्नत पर अमल करते हैं, और जब सुन्नत पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला को प्यार आएगा और जज्ब हो जाएगा अल्लाह की तरफ। तो अगर जज्बे करम की दिल नहीं कोई सदा पाता, अल्लाह के रास्ते में मेरा कदम रखना नामुमकिन था। मैं जब अल्लाह के रास्ते में कदम रखा हुआ है और अल्लाह के फजल थोड़ा बहुत चल रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर। आखिरी शेर है, मैं थक जाता हूँ अपनी दास्ताने दर्द से अख्तर, मगर मैं क्या करूं चुप भी नहीं मुझसे आ जाता। मगर मैं क्या करूं, चुप ही नहीं मुझसे रहा जाता। सही है बच्चे, सही आप वहीं बैठे सोफे पे तो आसानी रहेगी। नहमदुहु वनस्तईनुहु करीम, बहुत ही कीमती बात है जिसकी वजह से शाफी रज़वी साहब ने इस फकीर के बारे में कुछ बात फरमाई। फरमाया सद हजारा दाम उदाना अस्त ए खुदा, माँ चुमरवा हरी से बेनवा। इशाद फरमाया जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह दर से मसनवी में सुनाया जा रहा है कि जाल और दाने से मुराद है गंदम और चावल के दाने। तो जिनको शिकारी चिड़ियों को जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है, गोया वो दाना चिड़ियों को जाल में फंसने का आला है। चिड़िया समझती है कि मेरा चारा है और भूख में खाना शुरू कर देती है और जाल में फंस जाती है। तो मारूमी फरमाते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह, गुनाहों के हजारों जाल बिछे हुए हैं और उनके पीछे शैतान मिसले शिकारी के इनमें हमको फंसाने के लिए बैठा हुआ है। हदीस में आता है, अन्निसा हबाइल शैतान, औरतें शैतान का जाल है जिनसे वो गुनाहों में फंसा देता है। इस जमाने में शैतान ने औरतों को बेपर्दा करके कदम कदम पर ये जाल बिछा दिए हैं, उनके गाल और बाल दिखाकर फिर वबाल में मुब्तला कर देता है। मंशा ये है कि जितनी बातें भी अल्लाह को नाराज करने वाली हैं वो सब शैतान की दाम और दाने में शामिल हैं। खा वो औरतें हों, खा हसीन लड़के हों, खा हराम माल हो या इंटरनेट की हरामकारियां हों या मोबाइल फोन के फितने हों, जिस चीज से भी शहवत नफ्स मगलूब होकर गुनाह में मुब्तला हो जाए वही शैतान का जाल है। इस जमाने में चूंकि बेपर्दगी और उरियानी आम है इसलिए शैतान का सबसे बड़ा जाल हसीन सूरतें हैं। मारूमी अल्लाह से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, शैतान ने गुनाहों के हजारों जाल और दाने सारे कायनात में बिछा दिए हैं। हम मिस्कीन और गरीब और बेनवा चिड़ियों की तरह हैं जिन्हें भूख और प्यास लगी हुई है और वो दाना खाने के लिए बेकरार हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी शहवत नफ्स और ख्वाहिशात नफसानिया के शदीद तकाजे हैं और सामने गुनाहों के दाम और दाने हैं, इसलिए हमें सख्त खतरा है कहीं हम जाल में न फंस जाएं। आगे फरमाते हैं कि गर हजारा दाम बाशद भर कदम, बस अब ईगो की जरूरत नहीं रहेगी, छोड़ दें आप, इसकी फिक्र न करें, बस शुरू में सही था बस। चूं तू बामाई न बाशद हे जगम, ए अल्लाह, अगर हजारों जाल हमारे कदम पर हों लेकिन अगर आप अपनी रहमत और मदद के साथ हमारे साथ हैं, यानी अगर आप हमारे निगहबान हैं, आप हमारे पासबान हैं, आप मददगार हैं, तो हमें इन जालों का कोई खौफ नहीं, आप हमारी हिफाजत के लिए काफी हैं। क्योंकि अगरचे नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू है, कसीरुल अम्र बिस्सू है, बुराइयों का बहुत ज्यादा हुक्म करने वाला है, लेकिन ये नफ्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर इल्लामा रहिमा रब्बी का साया हमारे ऊपर हो। इल्लामा रहिमा यानी जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत का साया हो जाएगा वो नफ्स के शर से बचा रहेगा। इसके शर से कोई महफूज नहीं रह सकता सिवाय इसके जिसे अल्लाह की रहमत का साया हासिल है। इन्ना नफ्स लअम्मारा तुम बिस्सू जुमला इस्मिया है जो सबूत और दवाम पर दलालत करता है, यानी कोई शख्स नफ्स के शर से नहीं बच सकता जब तक इसे खालिक नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू का इस्तिस्ना इल्लामा रहिमा रब्बी नसीब नहीं होगा। अगर नफ्स अम्मारा बिस्सू है, इल्लामा रहिमा रब्बी का इस्तिस्ना भी खालिक नफ्स अम्मारा का है, बस इस इस्तिस्ना के होते हुए नफ्स अम्मारा बिस्सू की क्या मजाल है जो डंग मार सके। जिसपे अल्लाह की रहमत का साया होगा, नफ्स भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, वो खाले पे नफ्स बनाने वाला है, इस पे उसकी रहमत का साया होगा, उससे बस जाएगा। अल्लाह मालूसी फरमाते हैं, मा रहिमा रब्बी का मा मजदरिया जरफिया जमानिया है, जिसके मायने में आई फी वक्ति रहमति रब्बी, यही जब अल्लाह की रहमत का साया हो तो नफ्स की क्या मजाल है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके। तो मौलाना की ये दुआ का यही मजमून है कि ए अल्लाह, अगर आपकी रहमत का साया हम पर हो तो नफ्स और शैतान हमें गुनाहों के जेर दाम नहीं कर सकते। फिर आगे फरमाते हैं, ये बड़ी प्यारी बात है, इसको मैंने खुद भी देखा है, मोश्ता अंबार मा हफरा जदा अस, यानी खेत में जहां गल्ले का ढेर रखा होता है उसे खलियान कहते हैं, वहां चूहा जो है जमीन में नीचे सुराख कर करके दूर तक रास्ता बना लेता है और धीरे धीरे सारा गल्ला गायब हो जाता है। तो मारूमी फरमाते हैं, जिस तरह चूहा गल्ले का चोर है इसी तरह हमारा नफ्स भी चोर है। जब से हमारे नफ्स के चूहे ने हमारी नेकियों के खलियान और खजाने में खुफिया रास्ता बना लिया है, उसके फन और कैद और मकरो कैद से हमारी सब नेकियां जाया हो गई। मसलन कहीं दिखावा करा दिया, कहीं तकब्बुर करा दिया, कहीं जुल्म करा दिया, कहीं लालच आ गई, कहीं हुब्बेजा आ गया, कहीं लड़का देख लिया, कहीं लड़की को देख लिया, जिससे सारे अमाल जाया हो जाते हैं। जैसे एक हाजी ने कहा, ए नौकर मेरे मेहमान को उस सुराही से पानी पिला दे जो मैंने दूसरे हज में मदीना शरीफ से लाया था। हजरत थानवी फरमाते हैं, जालिम ने एक जुमले में दोनों हज जाया कर दिए, यही नफ्स की चोरी है जिससे नेकियों के खजाने खाली हो जाते हैं। मसलन कराची में बैठे बैठे किसी ने गीबत कर दी और जिसकी गीबत की है वो लाहौर में गया, तो उस गोया उसने नेकियों का माल मुफ्त में लाहौर भेज दिया, यानी इसकी नेकियां लाहौर वाले के नामा अमाल में चली गई। इसे खबर भी नहीं कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया, मेहनत की कमाई मुफ्त में गवाई। गीबत इसलिए हराम है कि मुफ्त में अपनी नेकियां जाया हो जाती हैं। हदीस से पाक में आता है, कयामत के दिन गीबत करने वाले की नेकियां जिसकी गीबत की है उसके नामा अमाल में डाल दी जाएंगी, और अगर इसकी नेकियां खत्म हो गई तो उसके गुनाह उस गीबत करने वाले के अमाल नामे में डाल दिए जाएंगे। हदीस में आता है, अलगीबत अशद मिनज़्ज़िना, गीबत ज़िना से भी अशद है। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, गीबत ज़िना से अशद क्यों है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना हक़ुल्लाह है और अल्लाह से माफी मांग लो माफ हो जाएगा, जिससे ज़िना किया उससे माफी मांगना फर्ज नहीं। लेकिन गीबत जो है बंदों का हक है, लाख अस्तग़फ़ार तौबा करते रहो, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा माफ नहीं होगा। लेकिन हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गीबत हक़ुल इबाद उस वक्त है जब इस बंदे को पता चल जाए, उसको पता चल गया भाई आपकी गीबत की गई है, उस वक्त वह हक़ुल इबाद है। अगर इसको इत्तला नहीं हुई और अब अगर इससे माफी मांगेगा तो उसको इत्तला होगी, इसको तकलीफ होगी कि इस शख्स ने मेरी गीबत की है। इस सूरत में गीबत की तलाफी यह है, जिस मजलिस में गीबत की है इन सब लोगों को जमा करके इनके सामने अपनी नलायकी का एतराफ़ करके, मुझसे सख्त नलायकी हुई, मैंने फलां की गीबत की है, इनमें दूसरी बहुत सी खूबियां भी तो हैं, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, कुछ इसाले सवाब करें, इस तरह गीबत का गुनाह माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर उस शख्स को इत्तला हो गई है तो उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर इसके माफ़ किए ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। इसलिए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गीबत ज़िना से अशद है क्योंकि हक़ुल इबाद है। अल्लाह मारूमी फरमाते हैं, अव्वल एजा दफे शर्रे मोश कुन बाद अजी अंबारे गंदुम गोश कोश कुन। ए मेरी जान, पहले किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर नफ्स के चूहे के शर से हिफाजत की तरकीब सीख ले, इसके बाद नेकियों का गंदुम जमा करने की फिक्र कर, क्योंकि जितना नेकियां कमाना जरूरी है उतना ही उसकी हिफाजत करना भी जरूरी है। इसका तरीका किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर अपने नफ्स की इसलाह कराना है ताकि गुनाह छूट जाए और नेकियों का नूर बाकी रहे। कहाँ हैं बच्चे? हाँ उनको अंदर ही आ जाओ, शाबाश। बस थोड़ी सी मजलिस होगी फिर चलना है, इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ खेलने थोड़ी आते हैं, दीन की बातें सुनने आते हैं। खेल के लिए तो स्कूल में आप लोग जमा होते ही हो, दूसरा भी टाइम है माशाल्लाह। आराम से तीन सांस में बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो। फरमाते हैं, ए मेरी जान, पहले किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर नफ्स के चूहे के शर से हिफाजत की तरकीब सीख ले, उसके बाद नेकियों का गंदम जमा करने की फिक्र कर, क्योंकि जितना नेकियां कमाना जरूरी है उतना ही उसकी हिफाजत करना भी जरूरी है। इसका तरीका किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहकर अपने नफ्स की इसलाह कराना है ताकि गुनाह छूट जाए और नेकियों का नूर बाकी रहे। दीन पर इस्तेकामत और आमाल की बका के लिए अहलुल्लाह की सोहबत इतनी ज़रूरी है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह जो बानी तबलीग थे, तबलीगी जमात के बानी हैं, फरमाते हैं, मैं जब दीन की मेहनत के लिए जाता हूँ तो मखलूक में इख्तलात और ज्यादा मेल जोल से नफ्स में कुछ कसाफत और गंदगी सी आ जाती है, इसको दूर करने के लिए मैं अहलुल्लाह की खानकाहों में जाता हूँ तो दिल मुजल्ला हो जाता है। जैसे मोटर कार तवील सफर पर जाती है तो पुर्जों में कुछ मैल कुचैल लग जाता है, लिहाजा इसकी ट्यूनिंग की भी जरूरत होती है, और सफाई के लिए कार को कारखाने में, जिसको वर्कशॉप कहते हैं, भेजा जाता है। इसी तरह दिल की ट्यूनिंग की भी जरूरत होती है, जिसकी वर्कशॉप खानकाहें हैं, क्योंकि नफ्स चोर है, इसमें खुफिया तौर से कुछ बढ़ाई और कुछ दिखावा आ जाता है। जिनका मशायख और उलमा से ताल्लुक नहीं होता उनकी गुफ्तगू से पता चल जाता है कि उनकी जबान से बड़ाई की बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। इन्हें खबर भी नहीं होती कि मेरे दिल में क्या क्या मरस पैदा हो गया, इसलिए चाहे कोई मदरस हो, कोई मुअल्लिम हो, कोई मुबल्लिग हो, मुसन्निफ भी हो, तस्किया नफ्स बगैर अहलुल्लाह की सोहबत और ताल्लुक के नहीं होता। एक साहब ने खुद बताया, मैं अल्लाह के फजल से दीन के लिए कुछ वक्त लगाकर जब कराची वापस आया तो मुझे तमाम लोग नहायत हकीर मालूम हुए। ये सब गाफिल हैं, इन्हें दीन की फिक्र नहीं। उलमा पंखों में बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, हम लोग दरिया सिंध के किनारे जंगलों में जाकर दीन फैला रहे हैं। लेकिन वो एक अल्लाह वाले से बैत थे, उन्होंने अपना शेख को हाल बताया कि मुझे तो बड़े बड़े उलमा तक शैतान नजर आ रहे हैं। इन बुजुर्ग ने कहा, सबसे बड़े शैतान तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में तकब्बुर पैदा हो गया है, तुमने अपने नफ्स को मिटाना नहीं सीखा। इस्लाम तो ये कहता है तमाम मुसलमानों को अपने से बेहतर समझो, अपने को सबसे कमतर समझो, बल्कि जब तक खात्मा ईमान पर नहीं हो जाता खुद को काफिरों और जानवरों से भी कमतर समझो। और तुम्हारा हाल इतना खराब हो गया कि आम मुसलमान तो कुजा, उलमाए कराम जो वारिसीन अंबिया हैं उनको हकीर समझ रहे हो। इन बुजुर्ग ने फरमाया, हदीस में आता है, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बी मिसक़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक जर्रा बराबर बड़ाई होगी। एक रिवायत में, वला यजिदु रीहा हा, दाखला तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इससे पता चला कि अहलुल्लाह से ताल्लुक कितना जरूरी है। अगर इस शख्स का कोई शेख नहीं होता तो यह हलाक हो गया था, क्योंकि शैतान ने दिल में तकब्बुर डाल दिया था, लेकिन शेख की डांट से सारा तकब्बुर निकल गया। ये तकब्बुर इतना बड़ा एटम बम है कि हज, उमरे, तहज्जुद, जिक्र, तिलावत, नवाफिल सबको उड़ा देता है। इसी तरह चाहे कितना ही बड़ा आलिम हो, मुहद्दिस हो, शेखुल हदीस हो, बुखारी पढ़ा रहा हो, अगर अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक नहीं होगा तो आप इसके इल्म व अमल में फासले देखेंगे। चाहे इल्म का समंदर हो, अगर इस्लाह ना कराई होगी तो आप देखेंगे कि हवाई जहाज में एयर होस्टेस से मुस्कुरा मुस्कुरा कर और उसकी तरफ देख कर बातें कर रहा होगा, और ज़िनल आइन या नज़र, यानी आंखों का ज़िना है नज़रबाज़ी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत और लान अल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैही, लानत वैसे शख्स पर जो बदनजरी करता है, और जो औरतें अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करती हैं उसका इल्म उसके ताक़ नसियान में होगा, यानी वो भुला देगा उसको। मरहूमी ने शेर में यही नसीहत फरमाई है, जितना नेकियां कमाना जरूरी है उनकी हिफाजत का अहतमाम भी उतना ही जरूरी है, और जो नफ्स की इस्लाह के बगैर नहीं होता, और नफ्स की इस्लाह मौकूफ है सोहबत अहलुल्लाह पर, यानी हम सोहबत भी उठाएं साथ साथ, सोहबत की भी फिक्र हो। फिर आगे फरमाते हैं कि पाल रा बुगजार मर्द हाल शो, पेशे मर्द कामिल पामाल शो, पाल को छोड़ दो और साहिब हाल बनो। कैसे बनोगे? किसी मर्द खुदा साहिब निजवत के सामने अपने नफ्स को मिटा दो। सैयद सुलेमान नदवी थाना भवन पहुंच गए और हकीमुल उम्मत से की एक ही मजलिस में इतने मुतासिर हुए कि मजलिस के बाद खानकाह की चौखट पकड़कर रोने लगे। फरमाया, मैं समझता था मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, लेकिन आज मालूम हुआ मुझे तो इल्म की हवा भी नहीं लगी, इल्म तो उस बूढ़े बोरिया नशीन के पास है। फिर ये शेर फरमाया, जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर ना पैदा शुभह बातिल हुआ, आज ही पाया मजा कुरआन में, जैसे कुरआन आज ही नाजिल हुआ, छोड़कर तदरीस और दर्स व मदरसा, शेख भी रिंदों में अब शामिल हुआ। इस आखिरी शेर में बज़ाहिर दर्स व तदरीस मदरसे की तौहीन मालूम होती है, लेकिन तौहीन नहीं है, बल्कि मुराद ये है, पहले मंतक व फलसफा उलूम ज़ाहिरा का गलबा था, अब इश्क इलाही का गलबा हो गया, इल्म दर्जे सानवी हो गया और मौला दर्जे अव्वली हो गया। यानी जो इल्म मदरसों में आलिम मंजिल मौला करता है, पहले इसी को काफी समझते थे, अल्लाह वालों की सोहबत से जो दर्द मोहब्बत और आहो फोगा इन उलूम पर अमल की तौफीक मिलती है, जो हमें बालिग मंजिल मौला करती है, इसकी दिल में अहमियत नहीं थी, अब जाविया निगाह बदल गया, यकीन आ गया कि अगर कि मौला अफजल है इल्म मौला से, लेकिन इल्म मौला भी जरूरी है, वरना मौला का रास्ता कैसे मालूम होगा। यानी इल्म भी जरूरी है, कुरान हदीस का इल्म भी हो, मगर उस पर अमल उससे ज्यादा जरूरी है, और अमल आता है अहलुल्लाह की सोहबत से। इसलिए दर्स व तदरीस भी जरूरी है, कुछ उलमा ऐसे होने चाहिए जिनका इल्म जबरदस्त हो, लेकिन इनके इल्म पर अल्लाह की मोहब्बत वालिब हो, फिर ऐसा आलिम नूरुन आला नूर होता है जिसके इल्म पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो गई, इसके इल्म में चाशनी बढ़ जाती है और एक आलम उससे सैराब होता है। लिहाजा शेर में मदरसा छोड़ना मुराद नहीं है बल्कि मदरसे के उलूम पर अल्लाह की मोहब्बत को गालिब रखना है ताकि आलिम मंजिल बालिग मंजिल हो जाए, और ये नेमत खानकाहों से अहले दिल के सीनों से मिलती है। इसके बाद सैयद साहब ने हकीम उल उम्मत से बैत की दरख्वास्त की, लेकिन वाहरे हकीम उल उम्मत हजरत ने उनको इस्लाह के लिए फरमाया, मैं अभी आपको बैत नहीं करूंगा, आपकी फला फला तसनीफ में फला फला गलती है जो हमारे अकाबिर अहले सुन्नत के मसलक के खिलाफ है, लिहाजा अलानिया बिल अलानिया के तहत अपने रिसाले में इन अगलास से अपना रुजू शाया करें तो फिर मैं आपको बैत करूंगा। ये सैयद साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह वाले इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े आलिम को अपनी इल्मी कोताहियों के ऐलान में जाह माने होती है कि मैं तो इतना बड़ा आलिम हूं और मुझे इल्मी कोताहियां वो दिखा रहे हैं। लेकिन सैयद साहब पे चोट लग चुकी थी, गए और अपने दारुल मुसन्निफीन के रिसाला अल मारिफ में ऐलान शाया किया और रिसाला लेकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत खुश हो गए और फरमाया, अस सुलेमा गिर इखलास अमल। वाह वाह, फोन आ रहा है नहीं चल रहा। अगर इखलास सीखना है तो सैयद सुलेमान नदवी से सीखो। सैयद साहब को बैत कर लिया। मेरे शेख शाहब्दू अली साहब फरमाते थे, जब कोई गैर आलिम किसी अल्लाह वाले से बैत होकर अल्लाह अल्लाह करता है तो साहिब नूर होता है, लेकिन जब कोई आलिम सिलसिले में दाखिल होता है और अल्लाह अल्लाह करता है तो नूरुन अला नूर हो जाता है। एक इलिम का नूर, एक दूसरे जिक्र का नूर। सैयद साहब ने जब अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह की मोहब्बत का मजा मिला, नस्बत अता हुई, उस वक्त उनके अजीब गरीब अशार हुए। नाम लेते ही नशा सा छा गया, जिक्र में तासीर दौरे जाम है। हकीम उल उम्मत से ताल्लुक के बाद सैयद साहब के हालात बदल गए और हजरत ने खिलाफत भी अता फरमाई और शेख की मोहब्बत में उनके अशार दर्द भरे हुए। जी भर के देख लो ये जमाले जहां फिरोज, फिर ये जमाले नूर दिखाया ना जाएगा, चाहा खुदा ने तो तेरी महफिल का हर चिराग जलता रहेगा यूं ही बुझाया ना जाएगा। इसको जो मिला है शेख की गुलामी ही से मिला है, वरना आलिम के इल्म पर इसके नफ्स के अंधेरे छाए रहते हैं। अपने इल्म पर अमल की तौफीक नहीं होती, अगर अमल होता है तो इखलास नहीं होता। इल्म की कमियत तो होती है, कैफियत नहीं होती। कुतुबुल आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही फरमाते हैं, इखलास जो है बगैर सोहबत अहलुल्लाह के मिल ही नहीं सकता। आप तजर्बा करके देख लें, गैर सोहबत याफ्ता आलिम के इल्म व अमल में फासले होंगे। इल्म इसके लिए शोहरत और जाह और तन परवरी का जरिया होता है, यानी इल्म तो इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि मेरी वाह और जो लोग मेरी इज्जत करें, अपने पेट कमाने का जरिया बना लेता है, ये लोगों से पैसे बटोरता है। इसी को मारूमी फरमाते हैं, इल्म रा बर्तन जनी मारे बुअत, इल्म गर बर्दल जनी यारे बुअत। इल्म को अगर तन परवरी शोहरत और जाह और माल के लिए इस्तेमाल करो तो इल्म तुम्हारे लिए सांप है जो तुम्हें हलाक कर देगा। देखिए कितनी अजीब बात है, जहां इल्म उलमा रब्बानीन का जिक्र है वहां उलमा सू का भी जिक्र है। लेकिन अगर इल्म को दिल परवरी का जरिया बनाओ तो कि दिल बन जाए, दिल अल्लाह वाला हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, तो इल्म तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। वाह वाह, इसलिए हदीस में आता है, तिर्मिजी की रिवायत है, मन खरजा फी तलब इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जो अल्लाह की रजा के लिए इल्म की तलब में घर से निकला, उसके लिए इस मुजाहिद का सवाब है, जिहाद के लिए निकला यहां तक कि वो घर लौट आए, क्योंकि दीन को जिंदा करने में और शैतान को जलील करने में, नफ्स और नफ्स पर मशक्कत उठाने में वो मुजाहिद ही की तरह है। इसी तरह उलमाए सू के लिए, जो इल्म को दुनियादारी और तन परवरी अपनी इज्जत और जाह के लिए आला कार बनाते हैं, अहदीस में सख्त वईद वारिद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इस नियत से इल्म हासिल करे कि उलमा से फख्र करे या बेवकूफों और जाहिलों से झगड़े या लोगों को उसके जरिए अपनी तरफ मुतवज्जे करे ताकि लोग उसकी ताजीम करें, मुराद यह है कि इल्म से उसकी गरज तलब दुनिया शोहरत और माल और जाह वगैरह हो, उसके लिए जहन्नम की वही है, अदखलहुल्लाहु नार, यानी ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा। एक दूसरी हदीस में आता है, कुरान और हदीस का जो इल्म अल्लाह की रजा के लिए सीखा जाता है, इस इल्म को अगर कोई इसलिए सीखता है कि दुनिया का माल और मता हासिल करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू भी निभाएगा। अल्लाह, इसलिए तहसील उलूम दीनिया के लिए तस्हीह है नीयत और इखलास इंतहाई जरूरी है। अगर ये हासिल नहीं तो इल्म इसके लिए वबाल है। और इखलास बगैर अल्लाह वालों की सोहबत के नहीं मिलता। बड़े से बड़े अल्लामा भी अगर अल्लाह वालों से मुस्तगनी होगा तो इसका इल्म इसके नफ्स को कैद से आजाद नहीं करा सकता, इसको नफ्स की कैद से आजाद नहीं करा सकता। इसके नूर इल्म पर नफ्स के अंधेरे होंगे, जिससे इसका इल्म ना खुद इसके लिए मुफीद होगा ना उम्मत के लिए मुफीद होगा। सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, बाज़े वक्त इल्म होता है लेकिन नफ्स के शर की वजह से इल्म की तौफीक नहीं होती, इसलिए ए अल्लाह मुझे इस चीज़ से निजात अता फरमाई ताकि मैं अपने इल्म पर अमल कर सकूं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी, ए अल्लाह रुश्द व हिदायत की बातों को मेरे दिल में इल्हाम फरमाते रहिए। लेकिन बाज़े वक्त इल्हाम रुश्द हो जाता है, पता है कि हिदायत की बातें हैं दिल में, पता है, लेकिन नफ्स के शर की वजह से इस पर अमल नहीं करता। मसलन जानता है इस हसीन को देखना सही नहीं है, पता है इसको अल्लाह की नाराजगी का सबब है, लेकिन नफ्स की शरारत से देखता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्हाम रुश्द मांगकर फौरन ये मांगा, व आयज़नी मिन शर नफ्सी, ए अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के शर से ही बचाइए ताकि ऐसा ना हो कि हिदायत का इल्म होने के बावजूद नफ्स की शरारत से मगलूब होकर मैं इस पर अमल ना कर सकूं। इसी ताकत को हासिल करने के लिए खानकाहों में अहलुल्लाह की सोहबतों में रहा जाता है, इतना खौफ हासिल हो जाए कि हम अपने नफ्स की बुरी ख्वाहिशात को रोक सकें। जिसको मारूमी ने इसी शेर में फरमाया कि अल्लाह ताला का अता फरमूदा खतरा इल्म हमारे ख्वाहिशात नफसानिया की कैद से आज़ाद हो जाए। लिहाजा शेख के साथ सफर व हजर में यही नीयत रखो कि हमें तकवा हासिल हो जाए और अल्लाह हमें मिल जाए, वरना शैतान और नफ्स नीयत में गैरुल्लाह की मिलावट करके अमल को ज़ाया कर देते हैं। मसलन ये कि शेख के साथ दस्तखान पर तरह तरह की गजाएं मिलेंगी, तरह तरह के शहर और मुल्क देखेंगे, तरह तरह के नमकीन चेहरे देखकर हराम लज्जत ऐठेंगे। ये नफ्स की चोरियां हैं, अगर इनसे होशियार न रहे तो शेख की सोहबत में रहते हुए भी महरूम रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने नफ्स के मकायद को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस जमाने में सबसे बड़ा इलाह बातिल और नफ्स और शैतान का सबसे बड़ा जाल ये हसीन शक्लें हैं, जिसको अल्लाह ताला बदनजरी से हिफाजत की तौफीक अता फरमा दे, समझ लो उस पर अजीम शान इनाम नाजिल हो गया, समझ लो बस वो मौला वाला बनने वाला है। और जो ये कहे अरे देखने से क्या होता है, लिया ना दिया देख लिया, इंतहाई अहमक और गधा शख्स है, कभी अल्लाह को नहीं पा सकता, नजरबाजी को मामूली गुनाह समझ रहा है। अगर ये मामूली गुनाह होता तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों का जिना नहीं फरमाते। आज इसी से लोग कोलू के बेल की तरह तरक्की से महरूम है, और ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। बदनजरी करने वाला औलिया सिद्दीकीन की खत इंतहा तक नहीं पहुंच सकता, जब मौत आएगी तब उसको हसरत होगी, जिन पर मरे थे आज उन्होंने साथ छोड़ दिया और कब्र में जनाजा तन्हा उतर रहा है। काश हम तकवा अख्तियार करते तो हमें मौला मिल जाता और हम औलिया सिद्दीकीन की आखिरी सरहद तक पहुंच जाते, लेकिन इस वक्त पछताने से क्या फायदा। जीते जी लैलाओं को छोड़ दो, हराम लज्जतों से तौबा कर लो, निगाहों की हिफाजत कर लो, तो लैलाओं को और तमाम लज्जतों का हासिल दिल में अल्लाह ताला देने पर कादिर है। उलमा हजरात इसकी दलील मांगेंगे क्योंकि मौलवी आबाशत की बिदून दलील खामोश न शवद, मौलवी वो है जो बिला दलील के खामोश न रहे, उसकी इतनी प्यारी दलील है कि मजा आ जाएगा। फरमाते हैं अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि काफिन आब्दा कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं, बोलिए कि इसमें तस्किरा है, लैला ना मिली तो मौला तुम्हें काफी नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारा मौला हर हाल में तुम्हारे लिए काफी है, जो लैलाओं को नमक दे सकता है वो बगैर लैलाओं के तुम्हारे दिल और जाम में दुनिया भर की तमाम लज्जतों का हासिल और सुरूर दाखिल कर सकता है। बस जरा मोहब्बत से अल्लाह का नाम लेकर तो देखो, अल्लाह के लिए हराम लज्जतों को तर्क करके तो देखो क्या मिलता है। लेकिन बात यह हम मट्टी के हैं और हर जिन्स अपनी जिन्स की तरफ माइल होता है, इसका फितरी तकाजा है। बस हमारी मट्टी मट्टी पर ही मट्टी होकर मट्टी होना चाहती है, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम अपनी मट्टी की फितरत के खिलाफ मेरी तरफ परवाज करो, तब तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। जिन चीजों की फितरत में परवाज है उनका उड़ना क्या कमाल है, कमाल तो ये है कि जिनको मट्टी से हमने पैदा किया है इनको परवाज हासिल हो। वाह वाह। हमारे जिस्म की मट्टी को अल्लाह की तरफ परवाज कराने का पायलट कौन है, वो शेख है। और पेट्रोल स्टीम क्या है, अल्लाह की मोहब्बत है। लेकिन ये स्टीम कैसे बनती है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं इनको रोकने का गम उठाने से, इनको रोकने का गम उठाने से ये स्टीम बनती है। और जो जितना ज्यादा गम उठाता है उतना ही ज्यादा तेज ये स्टीम बनती है। इस तरह जहाज को इसकी फितरत के खिलाफ जमीन से उड़ने के लिए बहुत पेट्रोल चाहिए। इसी तरह हमारा जिस्म जो मट्टी का है और मट्टी की चीजों पर मट्टी की शक्लों पर फिदा होना चाहता है, इसको अल्लाह की तरफ परवाज करने के लिए मोहब्बत का पेट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए। और ये पेट्रोल नफ्स की हराम ख्वाहिशात की मुखालफत यानी गुनाह और असबाब गुनाह से मुमाइदत से बनता है। अगर ये पेट्रोल नसीब हो गया तो हमारी रूह का जिस्म हमारे जिस्म को लेकर अल्लाह की तरफ उड़ जाएगा। इसी को मुअर्रिन ने फरमाया, ए अल्लाह, जो इल्म आपने अपनी मार्फत का हमें अता फरमाया है वो इन ख्वाहिशात नफसानियत से मगलूब है, इसलिए हम अल्लाह तक नहीं पहुंच रहे हैं। जब ख्वाहिशात नफ्स को मगलूब कर लोगे तो इल्म पर अमल की तौफीक हो जाएगी और एकदम अल्लाह की तरफ उड़ जाओगे। जिस्म को अपना सा करके ले चली अफलाक पर, अल्लाह अल्लाह ये कमाल रूह है जौला देखिए। और जो शख्स अल्लाह के रस्ते का गम नहीं उठाएगा, हसीनों से नजर नहीं बचाएगा, अपने नफ्स का गुलाम रहेगा, बुरी तमन्नाओं का खून नहीं करेगा, इसको मोहब्बत का ये पैटर्न कभी अता नहीं होगा जो इसको उड़ाकर औलिया सिद्दीकीन की आखिरी सरहद तक पहुंचा दे। लिहाजा जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। हम सब जान की बाजी लगाकर अल्लाह की मोहब्बत की स्टीम हासिल कर लें ताकि दायमी खुशी और दायमी राहत पा जाए। अल्लाह वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तरज़ा।